नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
The topic for the Governing Council meeting.
गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
To youth, to working life, to old age.
केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और ये कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रख कर लिए जाते हैं। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता से इतर विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब ने बदलती भू राजनीतिक स्थिति पर विचार विमर्श किया और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में कूटनीति के महत्व पर जोर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने IDFC बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच के सिलसिले में हरियाणा के विकास एवं पंचायत निदेशक कार्यालय के तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच में IDFC फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और 2 निजी स्कूलों के खातों से 645 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के गबन का खुलासा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को PMLA अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे रविवार तक 4 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।